नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।